कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल बढ़िया बात चली कि एक तृष्णा के नाश हो जाने के बाद जो सुख मिलता है वो सुख संसार के सब सुख मिलकर के भी आ जाए तो उसका 16वां अंश भी नहीं है। 16वें अंश के लिए क्यों कहा कि जैसे चंद्रमा होता है उसमें 16 कलाएं होती है, तो उसमें जो अमावस्या का जो काली थोड़ा सा चंद्रमा होता है अमावस्या वाले दिन, पूरा रात नहीं होती, तो छोटी से छोटी कला होती है इतनी सी, और उससे कोई प्रकाश वगैरह नहीं होता है या उसकी भी होड़ नहीं हो सकती। पितामह भीष्म ने कहा कि प्रिय युधिष्ठिर, जनक जी महाराज एक बार अपनी राजसभा में बैठे हुए थे, बड़े बड़े विद्वान त्यागी महापुरुष भी वहां बैठे हुए थे, उन सब के बीच में जनक जी ने बात पूछी कि हे मंत्रियों, यदि आपका सब घर बार जल जाए तो आप पर क्या बीते, यदि आपका सारा कुटुंब मर जाए तो क्या बीते, के महाराज क्या पता क्या दुर्दशा हो जाए, ये तो सभी की होती है। जनक जी ने कहा देखो आदमी को इतना ज्ञान तो प्राप्त कर लेना चाहिए मरने से पहले पहले कि मेरा सब कुछ स्वाहा हो जाए तो भी मेरे हृदय में दुख पैदा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात कहता हूं, मेरे पास कितना वैभव है, कितना धन दौलत है, लेकिन यदि मिथिला के अंदर आग लग जाए, सब लोग भस्म हो जाए, मेरा कुटुंब भस्म हो जाए, मेरा शरीर भी भस्म हो जाए, नमे दैयति किंचन है, मुझे जरा सी भी चिंता नहीं है। इस ज्ञान को सुनकर के सब मंत्री वगैरह आश्चर्य में डूब गए कि महाराज ये तो बड़ा कठिन काम है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि महाराज ऐसा संभव है क्या। पितामह भीष्म ने कहा कि देखो जब जनक जी ने ये बात कही है, जनक जी जैसा कौन तत्वज्ञानी होगा, सब उनको मानते थे और उनकी बात पर सबने विश्वास किया। युधिष्ठिर जनक जी ऐसे ही रहते थे, सब कर्म करते हुए अंदर से निर्लिप रहते थे। एक बार राजा नहुष था, उसके पास एक बोध्य नाम के ऋषि आए, बोध्य बड़े शांत स्वभाव के थे, शास्त्र का ज्ञान और साधना उन्होंने की, केवल शास्त्र के ज्ञान से तो मनुष्य में वो बोध नहीं आता, और जिसको बोध होता है उसके अंदर उसको शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, पर शास्त्र ज्ञान भी हो और आत्मबोध हो तो कहना ही क्या है। तो वो ऋषि आए तो राजा ने कहा महाराज मुझे ऐसी शिक्षा दो कि मुझे शांति मिले, मुझे शांति नहीं मिलती। तो बोध ऋषि ने कहा कि उपदेशेन वर्तामि नानुशास्मी है कंचन है। अरे राजन संसार में उपदेश ले, उपदेश देओ मत, उपदेश देओगे तो मुश्किल हो जाएगी, उपदेश लेते रहो। कि महाराज में समझा नहीं कि सृष्टि से उपदेश ले हुई सब सृष्टि तुम्हारे उपदेश के लिए तैयार है। महाराज फिर भी मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। कहा कि देखो हमने कई लोगों से शिक्षा ली है, पिंगला वेश्या से शिक्षा ली, कुरर नाम का पक्षी क्रॉन्च पक्षी उससे शिक्षा ली, सांप से शिक्षा ली और हिरण को जो खोजते रहते हैं ना उनसे उसमें हमने शिक्षा ली, बाण बनाने वाले से शिक्षा ली और कुमारी कन्या से शिक्षा ली कि महाराज क्या आप इनके पास जा जा करके शिक्षा लिए? क्या सर्प की वाणी आप जानते हैं? क्या पक्षियों की बात आप जानते हैं? एक बाण बनाने वाला तो एक मामूली आदमी होता है, उसके पास आप जैसे ज्ञानियों ने जाकर कोई शिक्षा ली? ऐसी शिक्षा नहीं ली राजन, हमने तरकीब से शिक्षा ली। पिंगला से हमने शिक्षा ली कि आशा बलवती राजन नैराश्यम परमम सुखम। किसी से आशा रखोगे तो आशा बड़ी बलवती है, एक बार आशा करोगे और आशा करोगे आशा करोगे, आशा बड़ी बलवती है। इसलिए आशा कहीं पर मत रखो, आपको बड़ा सुख मिलेगा। मैंने क्रॉन्च पक्षी से शिक्षा ली कि ज्यादा वस्तु अपने पास रहेगी तो लड़ाई झगड़ा होगा। ज्यादा लड़ाई झगड़ा बहुत बड़े पैसे वालों के पास ही रहता है, गरीबों के लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। एक क्रॉन्च पक्षी था, वो मांस का टुकड़ा लेकर आया तो कितने ही पक्षी उसके ऊपर टूट पड़े और आमिषस्य परित्यागात, जो ही उसने उसको छोड़ा कुर्रह सुख मेदते, वो क्रॉन्च सुखी हो गया। सांप से मैंने शिक्षा ली कि संसार में जितनी प्रवृत्तियां बढ़ाओगे उतना ही दुख बढ़ेगा, ये भी कर ले ये भी कर ले वो भी कर ले। अरे सांप है, अपना घर कभी नहीं बनाता है, दूसरे के बनाए हुए घर में रहता है और अपनी जिंदगी पूरी कर लेता है। सारंग पक्षी है, सारंग पक्षी, सारंग नाम का एक पक्षी है, सारंगान्वे, सारंग दो को कहते हैं, हिरण को भी कहते हैं, और सारंग नाम का एक पक्षी है जो पपिया कहलाता है, पपिया पपिया है, वो कभी किसी से मांगता नहीं है। पपिया बड़ा उसकी एक इच्छा है, मेघ का जो बाणी बरसे उस वो ही लेवे, कुछ नहीं लेता वो दूसरा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तो मेरे मन में आया कि पपीहा पक्षी कितना अच्छा, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि इसको किसी से कुछ लेना ही नहीं है। जब लेने की इच्छा होती है तभी लड़ाई झगड़ा राग द्वेष होता है। तो ऋषि मुनियों की वृत्ति है भैक्ष्य वृत्ति, वैसे रहना चाहिए। बाण बढ़ाने वाले से शिक्षा ली कि एकाग्र चित्त होकर रहे, घर में क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन बोलता है कौन सुनता है, इन बातों से उपराम होना चाहिए। कहते कैसे हो कि अपनी इंद्रियां है ना, इनको बाहर के विषयों से हटाओ और मन में लाकर डाल दो, फिर मन को बुद्धि में डुबो दो इंद्रियों सहित, और बुद्धि को अपने स्वरूप में डुबो दो। आपका ऐसा दृढ़ अभ्यास हो जाएगा तो आपके पास कहां क्या कुछ बातें हो रही आपको पता नहीं चलेगा, सामने बोलता है आदमी पता नहीं चलेगा। जैसे गहरी नींद में मनुष्य को पता नहीं चलता है, ऐसे ही अपने आत्मा के अंदर इंद्रियां लीन हो जाती हैं, डूब जाती हैं, तो तो उनको कोई शब्द सुनाई नहीं देता है। प्रारंभ में अंदर ही अंदर अनहत नाद होता है, अनहत नाद। कि अनहत नाद क्या होता है जी, जैसे ये बजाते हैं ना, ये पेटी बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, छमछमिया बजाते हैं, ये आहत नाद है। यहां नाद करने के लिए कुछ चोट पहुंचानी पड़ती है। तबले को यूं करेंगे तब तबला बोलेगा, और पेटी पर यूं करेंगे वो करेगा, सारंगी होगी तो वहां आहत करना पड़ेगा सारंगी में, छमछमे में आहत करना पड़ेगा। इस आहत नाद में भी एक आनंद की अनुभूति होती है। अपने अंदर जब अनहत नाद होता है, अंदर में अपने आप कुछ शब्द निकलते हैं ऐसे, जब इंद्रियां बाहर के शब्द से निरपेक्ष होकर मन में डूबती है, और मन बुद्धि में और बुद्धि स्वरूप में डूबता है, उस समय हमारे इंद्रियों में इतनी दिव्यता आती है कि अंदर ही अंदर रूप दिखता है, अंदर ही अंदर शब्द सुनाई देता है, अंदर ही एक गंध का अनुभव होता है। ये वैसे ही गंध नहीं है, ये कोई बाहर का गंध नहीं है, एक दिव्य सुगंध आती है। महात्माओं का ऐसा अनुभव है। अनंत नाद होता है, वहां पर ताल ठेका लय स्वर ऐसे नहीं होता है, एक शब्द एक अलग होती है। अनहत नाद होता है। तो बाण बनाने वाला एकाग्र होकर के बाण बना रहा था, तो उसके पास से राजा की सवारी निकली, पता ही नहीं चला, क्योंकि उसका मन उस कर्म में डूब गया। मैंने शिक्षा ली कि ऐसे यदि मेरी इंद्रियां और मेरा मन भगवान में डूब जाए तो क्या कहना हो सकता है। और कुमारी कन्या से मैंने शिक्षा ली कि मनुष्य को जहां तक हो लोगों से संपर्क कम करना चाहिए। संपर्क तीन चीज से होता है, एक आंख से, एक कान से और एक मुख से। ये तीन चीजें संसार में ज्यादा जाती हैं। बातें करते हैं तो जीभ लप लपाती है, सुनते हैं तो बड़े इंटरेस्ट लेकर के सुनते हैं, और देखते हैं तो बड़े इंटरेस्ट लेकर। तीन चीजों से संसार अंदर घुसता है। यदि इन तीनों को सुधार ले, आंखों से तो हम भगवान की प्रतिमा को दर्शन करें, अच्छे संत महापुरुषों के दर्शन करें, पिता माता के दर्शन करें, तो आंखों से संसार अंदर नहीं घुसेगा। कानों से यदि भगवान की कथाएं सुने, भगवान की चर्चाएं सुने, साधन भजन की बात सुने, तो कानों से संसार नहीं घुसेगा, वो भजन ध्यान वहां आकर के पहरा देगा। और जीभ से भगवान के नाम का संकीर्तन करे, भगवान की कथा बोले, सच्ची बात बोले, प्रिय बात बोले, मीठी बात बोले, तो फिर ये संसार अंदर जीभ से ज्यादा वो वहीं रुक जाएगा। और मन से भगवान का चिंतन करें। बहु नाम कलहो नित्यम, बहुत से लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वहां पर स्वभाव की टकराहट हो जाती है। मेरा स्वभाव आपसे नहीं मिलता, आपका स्वभाव मेरे से नहीं मिलता। और मनुष्य की कमजोरी क्या होती है कि अपने स्वभाव को अच्छा मानता है, दूसरे के स्वभाव को खराब मानता है। किसी से भी पूछ लो क्या बताया, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, उसके पास जाकर उनका स्वभाव अच्छा नहीं। अब किसका स्वभाव अच्छा नहीं बताओ, अपने स्वभाव को सब अच्छा बताते हैं। इसलिए एकाकी विचरिष्यामि, अकेले रहते हैं। कुमारी कन्या के यहां मेहमान लोग आए, धान कूटने लगी तो ये चूड़ियां बजने लगी हूं, तब उसने चूड़ियां उतार दी। उतारने के बाद एक एक चूड़ी रह गई, अब ठीक, कोई कलह नहीं होता। ऐसे अकेले रहना चाहिए। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य को किस वृत्ति से रहकर शोक रहित होना चाहिए, जगत में ऐसा क्या काम करे कि उसको उत्तम गति मिल जाए। तो पितामह भीष्म कहने लगे कि देखो, एक बार प्रह्लाद जी महाराज थे, वो घूमते घूमते एक जंगल में पहुंचे और वहां एक बड़े विलक्षण महात्मा मिले। देखो यहां नाम नहीं दिया है, भागवत में तो नाम दिया है उनका, दत्तात्रेय जी, वहां भी इतना स्पष्ट नाम नहीं है, पर दूसरी जगह नाम दिया है उससे अर्थ लगता है। तो प्रह्लाद जी ने कहा कि हे महात्मा जी, आप तो बड़े नम्र हो, बड़े स्वस्थ हो, हृष्ट पुष्ट हो और निर्विधित सह अनुसूयक है, आप कोई कामकाज भी नहीं करते हो, आपकी वाणी पर बड़ी मिठास रहती है, बड़े बुद्धिमान हो, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हो, मिल जाए तो कोई आपके अंदर हर्ष नहीं होता, भूखे भी रहते हो तो आपको मैंने देखा है कोई आप पर चिंता की रेखा भी नहीं है, आप तो सदा ही नित्य तृप्त से रहते हो, आपको कोई चीज मिले न मिले कोई परवाह ही नहीं है, ये सारा संसार तो काम क्रोध की नदी के प्रवाह में बह गया, लेकिन आप न तो धर्म करते हो, न आपके अंदर कामना है, न आप अर्थ सिद्धि के लिए कुछ करते हो, कूटस्थ की तरह रह रहे हो, क्या बात है महाराज। एकदम सबके साक्षी रहते हो, आपको देखकर बड़ा आनंद का अनुभव होता है, आपके पास ऐसी बुद्धि कहां से आई, इतना ज्ञान कैसे लिया, ऐसी वृत्तियां आपकी कैसे बन गई। हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमको भी कुछ ऐसे ज्ञान दे हो तो हम भी आपके ज्ञान से लाभ उठाए। पितामह भीष्म ने कहा कि देखो युधिष्ठिर, वे बड़े बुद्धिमान ऋषि थे, उन्होंने प्रह्लाद का बड़ा प्यार करते हुए कहा कि सुनो प्रह्लाद, जिन भगवान से संसार पैदा होता है और जिन भगवान में ये संसार लीन होता है, जिन भगवान से संसार का ह्रास होता है, जिनसे ये संसार का विनाश होता है, वे परमात्मा ही है सब कुछ, वो सब परमात्मा है। ऐसा हरदम भाव रहने से क्या तो कोई घट गया और क्या मिल गया बताओ। जैसे मिट्टी के बने हुए सब पात्र हैं, तो एक घड़ा मिल गया, एक परात मिल गई, एक गिलास मिल गया, है तो सारी मिट्टी ना। अब इसमें कोई टूट जाए तो मिट्टी है, फूट जाए तो मिट्टी है, और कोई काम आ जाए तो मिट्टी है। तो मिट्टी के बने हुए अनेक पदार्थों में वो कोई पदार्थ फूट जाए, कोई वस्तु टूट जाए तो कुमार को तकलीफ नहीं होती। मिट्टी घड़ा बना रहा था, घड़ा थोड़ा कर नहीं रहा, वापिस ले लो, वापिस मिट्टी ले, वापिस बना लो, मिट्टी है। ऐसे एक भगवान ही है। अब क्या तो मनुष्य का कोई चला गया और क्या उसके पास कुछ आ गया। अपना स्वभाव खराब अच्छा होता है, उसके कारण से हमको कोई अच्छा और बुरा मालूम देता है। प्रह्लाद इस संसार में जितना संयोग है उसमें संयोग तो दिखता है, वियोग सच्चा है दिखता नहीं है। लकड़ी में आग दिखती नहीं है, आग तो है। ऐसे ही सारे संसार में काल रूप से भगवान है। हमारे शरीर में मृत्यु है कि नहीं बताओ, किसान मृत्यु का है, कोई मृत्यु नहीं, अरे मृत्यु है तभी तो बदल गए, छोटे छोटे हाथ थे, सफेद अब एक काले बाल थे, बाल थे ही नहीं, बाल थे ही नहीं, काले बाल हो गए, सफेद बाल हो गए। तो ये शरीर के अंदर मृत्यु है ना, दिखती है क्या? शरीर को फाड़ो देखे मृत्यु दिखती है क्या? शरीर के अंदर न मृत्यु दिखती है, न आत्मा दिखती है, न अमरता दिखती है। अमरता और मृत्यु दोनों ही नहीं दिखती, इसलिए दिखाई देवे वही चीज सत्य है ऐसी बात नहीं है। ये सारा संसार है ना, इसके अंदर मौत को देखो, छिपे हुए मौत। शरीर को देखते हैं, अकड़ा करके चलते हैं और बढ़िया कपड़ा पहनते हैं और फिरंगियां लगाते हैं, बड़े ठाट बाट से चलते हैं। पर हे दानव श्रेष्ठ प्रह्लाद, इस शरीर के अंदर, इन कपड़ों के अंदर, इन शौकीनी के पदार्थों के अंदर लोग मृत्यु को नहीं देखते हैं। शरीर को देखते हैं, मैं कितना हूं, देखो मैं कैसा हूं, मैं राजा हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। अरे तू मृत्यु का ग्रास है। सर्व सामान्य गो विद्वान कृत कृत्य सुखम स्वपे, इसलिए मैं तो सबको मृत्यु के अंदर देखता हूं, इस तत्व को मैं जान गया और आराम से रहता हूं, ये रहेगा नहीं। एक संत थे, वो एक ही बात बोलते थे, रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, ये भी नहीं रहेगा। किसी ने कहा महाराज ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई ये रहेगा नहीं। महाराज इतना अच्छा काम हो गया, रहेगा नहीं, ये मंत्र था उनका, रहेगा नहीं। ऋषिकेश में एक वृद्ध संत थे, लकड़ी रखते थे, लकड़ी के ऊपर ही एक चंद्राकार बन गए, लकड़ी को नीचे पकड़ते ऊपर वो चंद्राकार, उसके ऊपर लिखा हुआ था ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। 30-35 वर्ष पहले की बात है। उनसे पूछा महाराज ये क्यों लिखा है ज्यों का त्यों? कि भाई देखो ऐसा है, कहीं जाते हैं आते हैं भूल जाते हैं ना, ये लकड़ी रखते हैं, बुढ़े आदमी ये लकड़ी रखते ही है, ये ज्यों का त्यों लिखा हुआ रहता है कि आप भगवान ज्यों का त्यों रहता है, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। ऐसे ही ऋषिकेश में एक संतों के आश्रम में मुर्दा है, सीमेंट का बनाया हुआ मुर्दा, उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ। उन संत के आश्रम में भगवान का मंदिर नहीं है और मुर्दा है, मुर्दा पत्थर की शिला पर मुर्दा। उनसे पूछा महाराज मंदिर रहने ये है कि मंदिर में जाएंगे तो इतना हमको वैराग्य नहीं होता है, और ये जो पड़ा रहा है मुर्दा जैसा सीमेंट का बनाया हुआ, वैराग्य बहुत होता है। मन में भगवान को तो हमने हृदय में बसाया है और नेत्रों में हमने ये देख करके सब मरने वाला है। तो सर्व सामान्य गो विद्वान कृत कृत्य है सुखम स्वपे, सबको मृत्यु के अंदर देखता हूं इसलिए आराम से मैं सोता रहता हूं, कोई मुझे चिंता नहीं। देखो प्रह्लाद, कभी तो मुझे चावल की कणी मिलती है और कभी मुझे पिण्याक मिलता है। पिण्याक माने ये पशु खाते हैं ना खड़, सबका निचोड़ निकाल लिया, तिल वगैरह की खड़, ले बाबा खड़ खा ले, खा लेता हूं। कभी मुझे पलंग पर सोने को बोलते हैं साहब, ये बड़े बड़े राजाओं के यहां तो पलंग पर सोता हूं, और कभी पृथ्वी के ऊपर कचरा पड़ा रहता है वहां सो जाता हूं। कभी राजाओं के यहां मुझे कम कपड़े वाला समझकर बढ़िया बढ़िया कपड़ा देते हैं राजा लोग, बढ़िया कपड़ा पहन लेता हूं, और जब मैं सो जाता हूं तो दूसरे लोग देखते हैं कि अरे इसके पास तो फिर आ जाएगा, या ये सो रहा है कोई उठा के ले जाता है, मैं बोलता ही नहीं हूं। मैं चेत में होश में रहता हूं तो भी नहीं कहता कि मेरा कपड़ा क्यों ले जाता है, ले जाता है इसी ने दिया ये दिया, परवाह ही नहीं करता। कोई अच्छी पदार्थ मिल जाए तो मैं राग नहीं करता। कई जगह जाता हूं मेरा तिरस्कार करते हैं, अकारण लोग मेरे पर मिट्टी डालते हैं, कोई मेरे पर पत्थर फेंकते हैं, कोई दुर्वचन कहते हैं, मैं सब कुछ सुनता रहता हूं। इधर से शब्द आए उधर उनको देखा हंस दिया, इधर शब्द आए तो उनको देखा हंस दिया। मैं ये सोचता हूं ये तो ऐसा ही है, लीला है भगवान की। अचल मन धनम शिवम विशोकम शुचिमतुलम विदुषाम मते प्रविष्टम अनभिमतम सेवितम विमूढ़ व्रतमिदम आजगरम शुचिश्चरामि। मैं तो आजगरी वृत्ति से रहता हूं एकदम, इसलिए लोग मुझे आजगर महात्मा बोलते हैं कि आजगर महात्मा है, अजगर की तरह पड़ा रहता है। ये बड़ी सुदृढ़ वृत्ति है, मृत्यु से दूर रखने वाली है। और इसके अंदर जो एक बार अजगरी वृत्ति में चला जाता है वो एकदम प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसमें सिवाय ईश्वर के विश्वास की दूसरी और कोई उसके पास जगह ही नहीं है। कभी मांगना नहीं, कभी कुछ किसी प्रकार का आशार पदार्थ की रखनी नहीं, अपने आप ही जो दे जाए सो देने दे, ले लिया नहीं दिया नहीं, कितना विश्वास बढ़ता है। अनियत फल भक्ष्य भोज्य पेयम, हमारे खाने पीने का कोई नियत क्रम नहीं है, अनियत रूप से मिल जाता है ले लेता हूं, प्रारब्ध के अनुसार हमको ये मिला ऐसा समझ के पाता हूं, हृदय में बड़ी शांति मिलती रहते हैं, ऐसा हमारा है ही नहीं। हम मन वाणी और बुद्धि की उपेक्षा रखते हुए चलते हैं, ये विचित्र, ये है खास बात, उपेक्षा वाली बात। महाराज जी बोलते हैं ना कई बार की उपेक्षा करो, न कि न हृदयम अनुरुद्ध वांग मनोवा, हम हृदय को वाणी को या मन को कहीं एक जगह अवरुद्ध करें ऐसा नहीं रखते, हम इनसे कोई संबंध नहीं रखते, उपेक्षा करते, ये हमारी आजगरी वृत्ति है, इसमें हम पड़े रहते हैं। प्रहलाद जी ने कहा महाराज तभी आपका अंदर का आनंद आपके चेहरे पर दिखता है, आपके आचरणों में दिखता है, आपकी क्रियाओं में दिखता है। प्रहलाद जी महाराज इसको सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज मनुष्य को अपने परिवार के लोगों का आश्रय लेना चाहिए कि अपने कर्म का आश्रय लेना चाहिए कि अपने धन का आश्रय लेना चाहिए या अपने बुद्धि का आश्रय ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए, किसका आश्रय लेना चाहिए? पिता मैं कहने का एकमात्र बुद्धि का आश्रय लो। बड़े बड़े राजा महाराजा श्रेष्ठ पुरुष वे ऋषि मुनि वे सब ने प्रज्ञा का बुद्धिमानी का ज्ञान का आश्रय लिया। देखो इंद्र और काश्यप का संवाद सुनाता हूं। एक बार की बात है ये काश्यप थे ये जा रहे थे, बड़े तपस्वी थे, तो वो जा रहे थे पैदल पैदल, तो एक बणिए का रथ आया, बणिए का रथ था, उस रथ के अंदर बणिया बैठा हुआ और खूब जो है उसमें मदोन्मत्त था, मेरे पास खूब धन है, वो धन के मद में वो तेजी से रथ दौड़ते दौड़ते उस काश्यप ऋषि के टक्कर लग गई, वो गिर गया। उस धनी आदमी ने उसकी परवाह ही नहीं की, तब जो है उस ऋषि ने कहा कि अरे आज मेरे पास पैसा नहीं है, तब ये इतनी उपेक्षा करके जा रहा है, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण ये तो बढ़िया है, वैश्य है, इसको कोई नहीं बोलता कि भाई तुमने ब्राह्मण के टक्कर लगा दी, बेचारे ब्राह्मण के शरीर के लग गए, इसको उठाओ पूछो, ये तो पैसे वाले के ही हैं सब दुनिया, मरिष्यामि, आज मेरे पास पैसा नहीं मैं तो जाके मरूंगा। तब इंद्र है वहां पर श्रृगाल बनकर के है, श्यालियो बन रहा है इंद्र, श्यालियो कि श्यालिया क्यों बना, कि जैसा देश काल परिस्थिति का वातावरण होता है ना वैसे ही बने, कि आज जंगल का समय है, यहां जंगल में और कौन आता है, तो श्यालिया बनकर के आया और कहने लगा ए ऋषिवर, क्या आप एक रथ के टक्कर से आत्महत्या करने के लिए चल पड़े हो? आप विचार करो ये मानव शरीर कितनी मुश्किल से मिलता है, इसमें आप आत्महत्या करने जा रहे हो? मनुष्यो ब्राह्मणश्चासि और श्रोत्रियश्चासि काश्यप, ब्राह्मण हो, मनुष्य हो, फिर ब्राह्मण हो, फिर श्रोत्रिय हो, कितने आप वेद को जानने वाले हो, ऐसा दुर्लभ अवसर आ रहा है और मरने के लिए जा रहे हो? संसार में जितना भी लाभ है उसमें सब में अभिमान होता है कि मैंने ऐसा किया और मैंने ऐसे किया, एक संतोष ही ऐसी चीज है कि जो सारे जो है लोभ को समाप्त कर देती है। तो आप तो संतोष रखिए, अहो सिद्धार्थ था तेषाम येषाम संती है पाणय है, अरे हम देखो श्रीगाल है और आप मनुष्य हो, संसार की दृष्टि से भी देखो, ज्ञान की दृष्टि तो अभी जाने दो, संसार की दृष्टि से देखो आपके हाथ हैं, हमारे हाथ नहीं है, हम आपको देख देख करके सोचते हैं कि अरे मनुष्य के पास कितनी ऊंची चीज है, ये हाथ है हाथ। तो मैं आपको कृतार्थ मानता हूं। अब जिनके पास जितने अधिक हाथ हैं वो उतना ही सौभाग्यशाली है। ये हाथ से क्या होता है श्रीगाल, कि देखो हाथ है तो खुजली चलती है तो खुजली कर लेते हैं, हम लोग कैसे खुजली करें, हमारे शरीर में कोई कीड़ा मकोड़ा लग जाए तो आप लोग तो अपने अंगुली हैं ये सब मुड़ने वाली, उनमें चाय जैसा यूं कर लो और उनको निकाल लो, हमारे यदि कीड़ा मकोड़ा लगे हम क्या करें। अपाणित्वाद वयम ब्रह्मन कंटकम नोद्धराम है, हमारे कांटा लग जाए तो बस वो चुप गया चुप गया, जीवन भर चुपता ही रहेगा, हमारा कांटा कौन निकाले। और दस 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 अंगुलियां हैं, और दूसरी बात है कि आप हाथ के द्वारा कितनी बढ़िया झोंपड़ी वगैरह बना लेते हो, आप हाथ के द्वारा भोजन को छोटा कर करके कितने आराम से खा लेते हो, हम लोगों के हाथ नहीं है तो हम कैसे कष्ट से भोजन करते हैं, और आप पानी पीते हो कितने तरकीब से जल पीते हो, हम ऐसा जल पी नहीं सकते हैं, आप अपने लिए अन्न पैदा कर लेते हो बैलों को जोत करके, हम कहां से लाएं। जो हम लोगों को दुख होता है वो दुख आपको थोड़ा ही मिलता है, आप अपनी जबान से अपने दुख को किसी और को बोल सकते हो कि भाई मेरे आज पेट में दर्द है, कि मेरे सिर में दर्द है, कि मेरे यहां छाती में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, बोल तो सकते हो, हम लोग तो वो भी नहीं बोल सकते। इसलिए आत्महत्या की बात सोचते हो, इतनी ऊंची जगह पर आकर के इतना नीचा पाप करने जा रहे हो आप। अरे हम तो श्रीगाल योनि में इतना कष्ट पाते हैं फिर भी हम ये कभी नहीं सोचते कि हम जो है आत्महत्या कर ले, क्योंकि आत्महत्या से महान पाप लगता है, भयंकर पाप लगता है। कई लोग तो जाति से सुखी हैं, कई लोग जाति से दुखी हैं, देवता है कितने ऐसे उत्पत्ति से ही सुखी सुखी रहते हैं, और ये पशु वगैरह ये बड़े दुखी रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि सर्वथा सुखी रहता हो। सर्वथा मनुष्य है वो पहले सोच, मनुष्य जन्म लिया फिर सोचता है पैसा हो जाए, फिर सोचता है राज्य मिल जाए, और फिर यज्ञ आदि करूं तो मैं देवता बन जाऊं, देवता सोचता है मैं इंद्र बन जाऊं, इंद्र सोचता है मैं ब्रह्मा बन जाऊं, न तो वो मनुष्य धनवान बन सकता है, न राजा बन सकता है, न देवता बन सकता है, न इंद्रपन बन सकता है। उसको कभी कुछ भी मिल जाएगी उसको तृप्ति नहीं होगी। अरे ये चीजें वास्तविक रूप से है ही नहीं। एक बहुत अच्छी बात कहते हैं सज्जनों ध्यान देने की है कि जो चीज है ही नहीं उसके लिए क्यों सुखी दुखी हो। अच्छा किसी आदमी को कहा जाए तेरा दूसरा सिर हमने काट दिया है तो दुखी होता है कि दूसरा सिर है ही नहीं उसका? या हमारा कहता तुम्हारा दूसरा सिर हमने काट दिया, अच्छा हमने तुम्हारा तीसरा हाथ काट दिया, अरे हाथ तो दो ही है। न द्वितीयस्य शिरसः छेदनम् विद्यते क्वचित्, दूसरा सिर कभी नहीं कटा और तीसरा हाथ कभी नहीं कटा, क्योंकि ये चीजें है ही नहीं, इसलिए कटने का कोई दुख नहीं। और कोई कह दे हमने आपके एक सिर और लगा दिया है, अच्छी बात है भाई, देखो साहब हमने आपके एक हाथ और लगा दिया है, अच्छी बात है। सोचते पागलों की सी बातें हैं, कहा हमारे एक हाथ लगा दिया हमने, ठीक कौन बहसबाजी करे, अच्छी बात है भाई हमने आपका एक सिर काट दिया है, एक सिर और लगा दिया है, अच्छी बात। मन में समझता है कि हमारे दो सिर नहीं है, हमारे तीन हाथ नहीं है, ऐसे मनुष्य को संपूर्ण संसार पर विचार करना है, संसार नाम की चीज ही नहीं है, क्यों हम यहां सुखी और दुखी हुए, क्या मिल गया और क्या घट गया। संसार में सावधान रहो, संसार की वस्तुओं का उपयोग करो तो इतना ही उपयोग करो कि इनसे शरीर चलता रहे, उन वस्तुओं का सुख का संस्कार अंदर नहीं पड़ना चाहिए। आह ये बहुत अच्छी है, इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को जो है बहुत साधारण वस्तु का उपयोग करना चाहिए। जो जितनी महंगी वस्तु का उपयोग करता है उस वस्तु का संस्कार अंदर ज्यादा बैठता है, महत्ता ज्यादा बैठती है। तुमने तो मरने का विचार कर लिया, अरे नीचे पुरुष होते हैं वो भी मरना नहीं चाहते हैं। दृष्ट्वा कुणीन पक्ष हतान, कई कई लोग ऐसे हैं जिनके पैर एकदम लंगड़ा गए हैं, और कई ऐसे हैं जिनको लकवा मार गया है, पक्षाघात हो गया है, कई कई निरंतर भयंकर बीमारी से उलझते रहते हैं, वो भी सोचते हैं कि हम मरे नहीं तो अच्छा है। देखो आप पर किसी ने कोई जाति वालों ने कलंक नहीं लगाया, लेकिन कई कई लोग जाति वाले लोग कलंक भी लगा लेते हैं, जाति से बहिष्कृत भी कर देते हैं, तब भी वे प्राण त्याग का विचार नहीं करते। आप इतना ही मूर्खता का विचार क्यों करते हो? देखो पिछले जन्म में मैं एक बहुत बड़ा पंडित था, बड़ा विद्वान था, कोई आदमी बात कहता तो उसका मैं तुरंत जवाब दे देता और खंडन करता। बेचारे ब्राह्मण लोग वैदिक बात कहते, वैदिक सिद्धांत कहते, मैं तुरंत खंडन कर देता उनका। तो मैं खुद नास्तिक, और मैंने औरों को भी नास्तिक बनाने में कम प्रयत्न नहीं किया। तो फिर उसके बाद मैं मर गया, मरने के बाद मुझे ये श्रृगाल की योनि मिली, श्रृगाल योनि श्यालिया बन जा, कूकता रहे चरदम, तो श्याले की बात की कोई कीमत नहीं होती। ऐसी जो धर्म विरुद्ध बात बोलता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए भाई तुम आत्महत्या का विचार छोड़ो और अपने ईश्वर आराधन रूप कर्म में लग जाओ। वो काश्यप ऋषि उस श्याले को गौर से देखने लगा, कहने लगा वे तू कोई मामूली श्यालिया तो नहीं है, इतना बढ़िया विलक्षण ज्ञान श्यालिया दे देवे समझ में नहीं आता, तुम सच्ची बताओ कौन हो। श्याले ने कहा कि तुम देखो कि मैं कौन हूं, कि मैं कैसे देखूं, कि तुम मुझे देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, मेरा असली रूप प्रकट हो जाएगा। वो देखता गया देखता गया देखता गया, उसको इंद्र के दर्शन हो गए। इसलिए भाई पितामह भीष्म कहते हैं कि जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसको पाप कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, और जो पुण्य कर्म करता है उसको पुण्य कर्म मिलता ही है। उत्सवाद उत्सवम यान्ति, जो अच्छे पुरुष होते हैं शुभ कर्म करने वाले, वे एक उत्सव से दूसरे उत्सव में जाते हैं, वो स्वर्ग से स्वर्ग में जाते हैं, सुख से सुख में जाते हैं, अच्छा काम किया है। और जो पापी लोग होते हैं उन लोगों को राजा लोग दंड देते हैं। ये पाप मनुष्य के पीछे छाया की तरह दौड़ता रहता है, मनुष्य कितना ही दूर भग जाए ये पाप उसको छोड़ता नहीं है। येन येन यथा यद यद पूरा कर्म समाहितम, जिस जिसने जब जब जहां जैसा कर्म किया है तत्तद एक तरो भूंगते, वो अपने कर्म का फल भोगता ही है। जैसे हजारों गायों के पीछे उनका बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, ऐसे ही ये पाप उस व्यक्ति के पीछे लगे ही रहते हैं जो ऐसा पापी होता है। इसलिए पाप को यदि दूर करना है तो अपनी इंद्रियों को पिंजड़े में जैसे पक्षियों को वश में रखते हैं ऐसे वश में करो, और उसके बाद इनको विषयों से हटा करके और विचार करो। युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज ये संसार किससे पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, और इसमें सब प्रकार के विधि निषेध की प्रवृत्तियां कब से चालू हुई। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि ये तो अनादि काल से सृष्टि का प्रवाह चलता है, सृष्टि का मूल कारण परमात्मा है। देखो आजकल एक अखबारों में आप पढ़ते ही होंगे कि सृष्टि का मूल परमाणु क्या है, उसकी खोज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कितना ही कर लेंगे असल में यही आएंगे वो। लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने जो खोज की है यदि ईमानदारी से खोज करेंगे तो यही आएंगे, और यदि ये यहां नहीं आएंगे अपने शास्त्रों में लिखा है उन्हें उनके बातों में तर्क नहीं रहेगा। पहले कहते हैं ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है, पहले ये पाश्चात्य लोग मानते थे भगवान भगवान कुछ है ही नहीं, अब कहते हैं एक शक्ति तो है भाई, एक शक्ति है, जीओडी गॉड जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, एक शक्ति है, शक्ति तो भगवान से ये सब चीजें पैदा हुई है। एवं अंतम भगवत प्रमाणम सलिलस्य च, देखो इसमें ये बताया कि सबसे पहले भगवान मानस देव बने अर्थात ब्रह्मा जी बने, और जो है फिर उन्होंने भगवान के आदेश से सब प्रकार की सृष्टि बनाई। खूब लंबा छोटा वर्णन है जो प्राय आप सुनते ही हो, पांच महाभूत बनाए, तीन गुण बनाए, शरीर के अंदर वायु है वो पांच प्रकार की वायु है, दस प्रकार की लेकिन पांच प्रकार की वायु रहती है मुख्य, प्राण अपान उदान व्यान और समान। इसके अलावा नाग कूर्म कृकराल देवदत्त और धनंजय, ये दस प्राण रहते हैं। जब आदमी मरता है तब नौ प्राण निकलते हैं, एक प्राण शरीर में रहता है। शरीर में कैसे रहता है, जब शरीर को चिता पर रखते हैं ना उस समय शरीर के ऊपर खूब सारा ये लकड़ और रखते हैं, बीच में उसको रखते हैं शरीर को, नीचे भी आग रहे और ऊपर से भी आग इसके ऊपर रहे, वजन रहे। यदि पूरी चिता लग जला दी उसके ऊपर मुर्दे को रखेंगे तो अंदर एक धनंजय वायु रहती है, उससे मुर्दा यूं यूं खड़ा हो जाएगा। वह आटा खा जाएगा, खड़ा हो जाएगा, जड़ेगा नहीं वो। इसलिए कुछ तो चिताएं बना दी, फिर मुर्दे को रख दिया, फिर उसके ऊपर और चिता बना दी, उसके भार से फिर वो नहीं, वो राख हो जाती है, तब धनंजय प्राण भी वायु में मिल जाता है। बताते हैं कि जीव इस शरीर में कहाँ रहता है, कि जीव शरीर में एक जगह नहीं रहता, वो सब जगह रहता है, शरीर के अंदर भी रहता है, बाहर भी रहता है। कहते हैं शरीर के अंदर तो वायु की मुख्यता है, क्योंकि वायु निकलती है तभी उसको मुर्दा मानते हैं, तो वायु की मुख्यता के कारण से ये शरीर बना। तो जीव की क्या हुई कि नहीं, जीव है वो इंद्रियों के साथ मिला रहता है, प्राण के साथ मिला रहता है, और इनके साथ ये बाहर जाता है, इसलिए इसको आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्त ऐसे अनेक अनेक नामों से उसको बोलते हैं। चारों प्रकार के वर्णों का विभाग भी भगवान ने किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्या शूद्राश्च द्विज सत्तम, ये सब भगवान के बनाए हुए हैं। ब्राह्मण का रंग होता है वो गौर वर्ण होता है, क्षत्रिय का वर्ण होता है वो लाल होता है, वैश्य का रंग होता है वो पीला होता है, शूद्र का होता है वो श्याम होता है। इस प्रकार से इनके रंग से इनका ज्ञान होता है। सबके अपने अपने कर्म है, वो कर्म भी भगवान ने ही निर्धारित किए शास्त्र के द्वारा। और गृहस्थ आश्रम इन सब आश्रमों से श्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम के द्वारा सब आश्रमों का पालन होता है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये वानप्रस्थ घर में भी निभाया जा सकता है, और संन्यास आश्रम घर का बिल्कुल त्याग करके निभाया जाता है। शिष्टाचार वगैरह बताते हैं कि देखो, दुराचारा दुर्विचेष्टा दुष्प्रज्ञा प्रिय साहसा असंतस्तुति विख्याता संतश्चाचार लक्षणा, जिनके आचार विचार दूषित होते हो वे दुष्ट कहलाते हैं, और जिनके आचार विचार बड़े अच्छे होते हो उनको संत कहा जाता है, श्रेष्ठ पुरुष है। मनुष्य यदि लघु शंका करे, मलमूत्र का त्याग करे, तो कभी भी रस्ते पर नहीं करना चाहिए। जिस खेत में धन धान्य होता हो उस खेत के अंदर मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, सड़क पर नहीं करना चाहिए, जहां गायें रहती उन गायों के वहां पर नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर देवताओं को तर्पण करना चाहिए, और यदि पास में कोई नदी वगैरह हो तो नदी में जाकर स्नान करके फिर देवताओं का तर्पण करना चाहिए। सूर्योदय का जिस समय सूर्य उदित होते हो उस समय सूर्य के दर्शन नहीं करने चाहिए, और सूर्योदय के समय में कभी सोना नहीं चाहिए। नित्य प्रति सूर्योपासन करना चाहिए, दोनों हाथ दोनों पैर और दोनों और मुंह, ये पांच चीजें हैं, इन पांच चीजों को धोकर के भोजन करना चाहिए, सीधा भोजन करके नहीं बैठना चाहिए। भोजन जैसा भी मिल जाए उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, न निंद्याद अन्न भक्षाश्च, क्योंकि निंदा करने से उस भोजन का रस अच्छा नहीं बनेगा। भोजन के बाद हाथ धोकर के उठना चाहिए। रात को सोवे तो नार्द्र पाद है स्वपेन निशी, गीले पैर से नहीं सोना चाहिए, पैर सुखा लेने चाहिए। यज्ञशाला है, ये पवित्र स्थान है, देवालय है पवित्र स्थान है, चौरा है ब्राह्मण है, ये सब, और गाय बैल मिले इनको दाहिना करके चलना चाहिए। अतिथि आता हो तो उसके लिए जो है भोजन बना करके उनका स्वागत करना चाहिए। जिसके घर में अतिथि आए उसके घर में बड़ा आनंद उत्सव होना चाहिए कि आज हमारे घर में अतिथि आए हैं। सायंकाल और प्रातःकाल दो समय भोजन करने का विधान है, बार बार खाना ये विधान नहीं है। जो दो बार ही भोजन करता है उसको उपवास जैसा पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति कभी भी पराई दृष्टि पर, पराई स्त्री पर कुदृष्टि नहीं करता है, उसको ब्रह्मचारी का लोक मिलता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद भोजन करोगे तो वो भोजन गाय अपने माता के दूध के समान पवित्र होता है, अपनी माँ का जो दूध होता है उसके समान ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद बचा हुआ भोजन होता है वो पवित्र होता है। कहीं बैठे हुए हो तो मिट्टी के ढेले लेकर यूं फोड़ना, बैठे बैठे यूं तिनका तोड़ना या ये नक चबाना और साहब मुंह में आंवली डाल देना, कर देना, पन्ना उलटना हो तो आज पन्ना उलट रहे हैं, कैसे हरदम हाथ पैर हाथों को झूठा करता रहना, ये अच्छा नहीं है। जो आदमी ऐसा करता है उसकी आयु क्षीण होती है और वो तोते के समान, पिंजड़े के तोते के समान अपने जीवन को व्यतीत करता है। अपने देश में या परदेश में भी अपने पास कोई आदमी आ जाए तो उसको भूखा नहीं रहने देना चाहिए। जो हम भोजन करते हैं वो भोजन पहले उसको कराना चाहिए। अपने से बड़े पुरुष अपने पास आए, गुरुजन आए, तो उठ करके अभिवादन करो, कर्तव्यम च अभिवादनम। और गुरुजी पास में आ जाए तो उनका आदर करो, सत्कार करो, प्रणाम करो, और इससे तुम्हारी आयु, यश और लक्ष्मी बढ़ती है। फिर आया है नेक्षितादित्यम उद्यंतम, उगते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए। और भी कई बातें दी है, इनको देखे इनको नहीं देखे, परंतु शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपना जो हृदय है ये सब तीर्थों का तीर्थ है, इसलिए जैसा हमारे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने कहा है उसके अनुसार अपने हृदय में शुभ आचरण रखने चाहिए। जब कोई आदमी परिचित व्यक्ति हमसे मिले, दर्शने दर्शने नित्यम सुख प्रश्नम उदारे, मिलते को अच्छा अच्छा सा सब ठीक, राजी आप प्रसन्न तो है ना, जब भी मिले तो वही राजी खुशी का समाचार पूछना चाहिए। और सायं प्रातस्य विप्राणाम प्रदिष्टम अभिवादनम, सायंकाल और प्रातःकाल ब्राह्मण का अभिवादन करो और अपने घर में जो बड़े हैं उनको प्रणाम करो। जहां देवताओं का मंदिर हो, गायों का बीच हो और ब्राह्मण जहां यज्ञ वगैरह करते हो, तो उन सब कामों के अंदर अपना दो हाथ है उनमें दाहिने हाथ को काम में लेना चाहिए। गाय को भी खूब सहलाना हो तो विशेष करके दाहिने हाथ को काम में ले, आहुति देनी है तो दाहिने हाथ में, भोजन करते हो दाहिने हाथ से भोजन करो। अब कोई कहे हमारे हाथ टूट गया तो क्या करें, ये अपवाद है, वहां कहीं कहीं छूट है। खेती यदि होती है तो सबसे पहले जो खेत की चीज होती है वो देव मंदिर में और ब्राह्मण के चढ़ानी चाहिए। किसी की ब्राह्मण को या अतिथि को भोजन कराते हो तो संपन्नम भोजनम, क्या साहब अच्छी से भोजन हो गया ना, तृप्ति हो गई ना, उनको बार बार पूछना चाहिए कि साहब और ले, और ले, और ले। ऐसे ही जल के लिए पूछना चाहिए। और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो यही कहे हां साहब हो गया, तृप्ति हो गई, तृप्ति हो गई। बड़ों को त्वंकारम नाम ध्येयं च, अपने से बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए और उनको त्वंकार माने तू तू ऐसे तुकारे से नहीं बोलना चाहिए। किसी आदमी की गलतियों को, अपराध को अपने मुख से नहीं बोलना चाहिए, वो ऐसा है वो ऐसा है। किसी को उलाना नहीं देना चाहिए। बहुत से ऐसे आदमी होते हैं जो अपने पाप को छिपाते हैं, संतों के सामने अपने पाप को प्रकट कर देना चाहिए। पापम कृतम न स्मरति, ये मूढ़ है। मूर्ख आदमी तो किए हुए पाप को याद ही नहीं करता है, बुद्धिमान आदमी किए हुए पुण्य को याद नहीं करता है। कोई अच्छा काम हो गया, तो जो मूर्ख आदमी अपने पाप को याद नहीं करता है, और उसको तो याद करना, मेरे से कैसा पाप हो गया, ऐसा पाप नहीं होना चाहिए, विवर्तमानस्य, और उस पाप से वो अलग होना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। यदि वो नहीं होता है तो जैसे चंद्रमा के पीछे राहु लगा रहता है, ऐसे ही उसके पीछे पाप लगा रहता है। आशया संचितम द्रव्यम दुखे नहीं वो उपभोज्यते, अपने पास बहुत अच्छी बात कहे, ज्यादा धन का संचय मत करना, क्योंकि जिस द्रव्य को आपने आशा से संचित किया है ये मेरे धन आगे काम आएगा, आगे काम आएगा, और उसमें से जब कुछ खर्च होने लगता है तो आपके हृदय में दुख पैदा होता है। और फिर जो है मरते समय में उसकी बड़ी दुर्गति होती है। तद्बुधा न प्रशंसन्ति मरणम न प्रतीक्षते, ऐसे धन की बुद्धिमान आदमी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि मृत्यु है वो किसी की प्रतीक्षा थोड़ी ही करती है कि बेचारे का इतना पैसा है संचित किया हुआ, ये खर्च हो जाए तब आऊं, ऐसा तो है नहीं। इसलिए किसी आशा से धन को संचित मत करो। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों का कल्याण करो और सब प्राणियों में भगवान को देखो, यही सबसे बड़ा धर्म सुख का साधन है। अब युधिष्ठिर जी महाराज आगे से दूसरा प्रश्न करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्,
बोलो बोलो
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण
नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
श्रीमन्नारायण
नारायण
नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्यामवर रामचंद्र की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्मा की जय।